ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय का 38वां श्लोक, जो अध्याय शीर्षक है हिरण्यकशिप का साधु सदृश पुत्र प्रह्लाद महाराज। श्लोक संख्या 38। सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः संभोज शयनासनैः स्वर्हितलिङ्गधर शत्रुर् मुनिर्दुष्टमिवेन्द्रियम्। शब्दार्थ, सर्वैः सभी उपायैः उपायों के द्वारा हन्तव्यः मार डाला जाए, संभोजः खाते, शयनम लेटे, आसनैः बैठे हुए, स्वर्हित लिंगधरः मित्र की भूमिका धारण करते हुए, शत्रुः दुश्मन, मुनेः मुनियों की, दुष्टम अनियंत्रित, एवं जैसे, इंद्रियम इंद्रियां। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, जिस प्रकार असंयमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के कार्य में लगे हुए योगियों के शत्रु होती हैं, उसी प्रकार यह प्रह्लाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा बस नहीं चलता। अतएव खाते बैठे या सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। तात्पर्य, हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद महाराज को मार डालने का अभियान नियोजित किया कि वह अपने पुत्र को खाते समय विष डालकर उसे उबलते तेल में बैठाकर या जब वह सो रहा हो तो उसे हाथी के पैर के नीचे फेंककर मार डालेगा। इस तरह हिरण्यकश्यप ने अपने उस निर्दोष बालकों को, जो अभी केवल 5 वर्ष का था, मार डालने का इसलिए निश्चय किया क्योंकि यह बालक भगवान का भक्त बन गया था। भक्तों के प्रति ऐसे ही मनोवृत्ति होती है अभक्तों की। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदमतिर्गति मत् सर्वस्व पादं भुजौ श्री राधा मदन मोहनौ। दिव्यादिवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्ध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठलिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुष्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तुनहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। बर्हा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रत्वा सह कनक कबिशं वैजयन्ती च मालां। रन्ध्रान वेणुरधर सुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः प्राविशत् गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः सम्भोज शयनाशनैः सुहृद्लिङ्गधर शत्रुर् मुनिर्दुष्टमिवेन्द्रियम्। जिस प्रकार असंयमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के हेतु आगे बढ़ने के कार्य में लगे हुए योगियों की शत्रु होती हैं, उसी प्रकार यह प्रह्लाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। अतएव खाते बैठे या सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। तो सप्तम स्कंद के प्रह्लाद चरित्र हम बहुत दिन से हम श्रवण करते आ रहे हैं। तो सुंदर प्रसंग कि हिरण्यकश्यप एवं प्रह्लाद महाराज के बीच में ये संवाद है। अभी आपने सुने विगत दिनों में सुंदर सुंदर प्रह्लाद महाराज का जो उक्तियाँ समस्त बद्ध जीवों के लिए ये कंठ का हार है। तीन बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद से प्रश्न पूछे, तीनों बार उन्होंने सटीक जवाब दिया, क्योंकि उनको परवाह नहीं पिताजी खुश होंगे क्या नाराज होंगे, जगत कल्याण के लिए जो अप्रिय सत्य है वही उन्होंने भाषण किया। उन्होंने रोक टोक पिताजी के प्रश्न का जवाब दिया, जिससे हिरण्यकशिपु बहुत आग बबला, इतने गुस्सा में आ गए कि गोद से उठाकर पटक दिया और भला बुरे बहुत सारे बात कही है। तो आदेश दिया षंड और अमरक को, पहले तो षंड अमरक दोनों गुरुपुत्रों को उन्होंने बहुत भर्त्सना की, इतना भर्त्सना की कि एक आचार्य पद पर अधिष्ठित व्यक्ति को इस प्रकार जो वाक्य प्रयोग अशोभनीय है, ब्रह्मबंधु दुष्ट और इस प्रकार अनेक प्रकार ऐसे ही कह डाला कि अरे दुष्टों, मुझे परवाह किए बिना तुमने छिपे चुरे अर्थात अपने छद्मवेश में प्रह्लाद जी को इस प्रकार शिक्षा देते हो जो कि मेरे शत्रु का गुणगान करता है। इस प्रकार उन्होंने जब कहे तो षंडामर्क बहुत बढ़िया उत्तर दिया था। तो कहा वो दोनों षंडामर्क ने, तो उन्होंने इस प्रकार कहे कि हम लोग का इस जो प्रह्लाद जी ने आपसे ये जवाब दिया है हम लोग कुछ नहीं बताए, उन्होंने तो अपना नैसर्गिक जो स्वाभाविक है तो उन्हीं का अंतकरण से वो निकला हुआ बात है, तो इसलिए हम लोग निर्दोष है, हमारे ऊपर आप रुष्ट होने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर उन्होंने प्रह्लाद को बुलाकर उन्होंने क्या कहा कि कैसे कहाँ से ये सीखा, गुरु ने तुमको ये बात नहीं सिखाई, ये शिक्षा नहीं शिक्षा दी, तो फिर कहाँ से सीखा। तो उन्होंने सुंदर सुंदर तीन श्लोक उन्होंने पाठ किए। इसके बाद तो उनका जो क्रोध है और सहन नहीं हुआ, इतने क्रोध में आ गए तो तुरंत उनको गोद से फेंककर जो उनका असुर बंधु जो उनका मित्र थे तो उनसे आदेश देते हैं कि इनको आप मार डालो, किसी भी प्रकार से ये शत्रु का गुणगान करने वाला ये मेरा ही शत्रु है, चाहे ये मेरे पुत्र हो कि या आत्मा जो हो कि कुछ भी हो। उन्होंने गया कल जो सुंदर श्लोक प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यप ने कहा, उन्होंने क्या कहा, परोपि अपत्यम हितकृत यथौषधम स्वदेह जो अपि आमयवत सूत अहितः छिंद्या तदंगम यदुतात्मनो अहितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्। उन्होंने कहा जैसे औषध हम निदान का रूप में रोग के निवारण के लिए खाते हैं, तो औषध हमारे जरूर ये हमारे हितकारी है, यद्यपि हमारे शरीर का वो अंगवा अव्ययभूत नहीं है, क्योंकि ये वनस्पतियों से बनाया हुआ है। आजकल का दवाई नहीं है, एलोपैथिक नहीं है, जो वास्तव जड़ी बूटियां से है, क्योंकि भगवान ने ये संसार बनाया ये उसमें मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए जो आवश्यक हितकारी वस्तु उन्होंने इस प्रकार वनस्पति उद्भिद बहुत सारे बना रखे हैं। उससे हमारे कदाचित कफ वात पित्त का जो वैषम्य होता है उनको संतुलित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार ये सब जड़ी बूटियां बना रखे हैं। तो वो जड़ी बूटी मनुष्य का अवयव अंगभूत नहीं है, फिर भी मनुष्य आरोग्य के लिए उसको सेवन करता है और वो रोग मुक्त हो जाता है। तो इसलिए वो औषध भी हितकारी है, किंतु जो व्यक्ति अपने कोख से, अर्थात वो कहते हैं अपने आत्मज, अपने से जात हुआ जो प्रह्लाद, ये साधु वेश धारण करके ये मेरे शत्रु ही है, शत्रु ही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये शत्रु को तो जड़ से मिटा देना ही चाहिए। जैसे शरीर में एक अंग विकल हो जाए, जैसे कैंसर आदि, कुष्ठ आदि, ये रोग ये अत्यंत दुसाध्य रोग है, अगर ये शरीर में हो गया तो वो सारे अंग को व्याप्त हो जाता है और सारे अंग को नष्ट कर डालता है। इससे अगर व्यक्ति जीवित रहना चाहे तो उस अंश को शरीर से अलग कर देना चाहिए। इस प्रकार ये हमारे वंश में असुरकुल में, ये जो चंदन मन रूपी असुरकुल में ये कंटक का वृक्ष, ये बबुल का पेड़ आ गया कहाँ से, इसको तुरंत काट कर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने आदेश दिया। तो फिर आज कह रहे हैं कि जिसलिए यस्मात् अयम सुहृत् लिंगधरः, टीकाकारों ने कहते हैं जिसलिए ये सुहृत् लिंगधरः, ये तो पुत्र वेश में ये शत्रु ही आया है, क्योंकि पुत्र हमेशा पिता का क्या होता है, सुहृत् होता है, सुहृत् मतलब हिताकांक्षी, ऐसे ही कहा गया शास्त्रों में, कहा गया कि पुत्र पिता को पूत नाम का नरक से उद्धार करता है। तो नरक से अगर किसी व्यक्ति को किसने उद्धार कर दिया तो जरूरी वो हिताकांक्षी होगा। तो इसी सेंस में तो ये सुहृत् लिंगधर है, ये साधु पुत्र वेश धारण करके आया हुआ है, पर ये तो शत्रु ही निकाला है, ये शत्रु ही बन गया मेरा, शत्रु रे वही। तस्मात सर्वे रूपाय रही उपाय हंतव्य, सभी प्रकार उपायों से इनको मार डालना चाहिए, यह हिरण्यकशिपु का मंतव्य है। किसके सर्वे उपाय, क्या क्या उपाय है, ये कहते हैं उपायन, ये कहते हैं संभोज, संभोज भोजन, सम्यक भोजन। भोजन हम सभी करते हैं, लेकिन भोजन का जो स्वाद है तभी आस्वादित तो होता है जब व्यक्ति बिल्कुल भूखा हो, क्षुधार्त हो, चाहे किसी भी प्रकार भोजन हो वो पल पल उसको आस्वादन करेगा। तो इसलिए उन्होंने ये कहते हैं कि संभोज भोजन के द्वारा, किस प्रकार भोजन, ना प्रह्लाद को खाना मत दीजिए, उसको भूखे रखा जाए,
जब उनको उत्कट तीव्र क्षुधा उत्पन्न होगा तो फिर तो उनको भोजन अत्यंत स्वादिष्ट भोजन, लेकिन भोजन कैसे ना विषलिप्त, उसमें जहर मिला हुआ है, घुला हुआ है, इस प्रकार वो भोजन को उसको दो और वो क्षुधार्त के मारे वो तो उसको खा डालेगा और जिसके फलस्वरूप उसका जीवन हानि होगा। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं संभोज शब्द प्रयोग किया। और फिर कहते हैं शयन, संभोज शयन, विश्वास के साथ उनको ऐसे ही, एक तो प्रह्लाद थे ही अंतःकरण से एकदम शुद्ध शुद्धात्मा थे, उनका अंतःकरण में मल रूपी तीव्र जो गंध है लेश मात्र नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ स्फटिक के समान उसका हृदय। तो ऐसे ही हम जैसे तमोगुणी नहीं है, जहां बैठे था वहां वो लेट जाए सो जाए, ऐसे ही नहीं, शयन का समय होता है, शरीर जब थक जाता है उसको आराम देने के लिए, इंद्रियों को फिर अपना कर्तव्य में ले आने के लिए शरीर को आवश्यक होता है आराम। तो जिस प्रकार व्यक्ति आराम करने के लिए एक उत्तम शया पर लेट जाता है, सुखपूर्वक वो नींद ले देता है, उस प्रकार जब प्रह्लाद शयन करेगा उसके सुंदर व्यवस्था बनाओ, और जब वो सो जाएगा उस शया पर तो फिर शास्त्रों के द्वारा उसका छेद शीर छेद कर छेदन कर दो, काट डालो। इस प्रकार हिरण्यकशिपु अपने जो जो असुर बंधु उनको उपदेश दे रहे हैं। फिर और क्या है, ये कहते जब वो सुखपूर्वक बैठता है, कब वो सुखपूर्वक प्रह्लाद बैठते हैं, प्रह्लाद हमेशा ये आचार्य है, महाभागवत है ना, ये महाजनों में से द्वादश महाजनों में से एक है, ये स्मरण का आचार्य है, जब भी बैठते हैं एक पल उनका समय व्यर्थ नहीं जाता भगवान को स्मरण किए बिना, हमेशा स्मरण करते रहते हैं। जब वो भगवान का, भगवान विष्णु का स्मरण करता बैठेगा तो उस समय उनको ध्यान नहीं रहेगा, तो जब भगवान का चिंतन में खो जाते हैं तो फिर बाह्य स्फूर्ति नहीं रहता है। तो इसलिए जब उन्होंने स्मरण के लिए, स्मरण करता हुआ जब आसन पर बैठ जाता है, उस समय आप भी शस्त्रों के द्वारा उनका मस्तक छेदन कर दो, इस प्रकार। और प्रभुपाद जी ने तो कहा कि हाथी के पैर का नीचे उसको डाल दो, उसे कुचलकर मार डालो, ये भी कहा। क्यों क्यों इस प्रकार ये करते हैं, तो ये कहते हैं कि उपमा देकर कहते हैं, ये तो साधु का वेश धारण करके सुहृद लिंग धरह, ये जो है पुत्र का हितकांक्षी, मेरा कल्याण करने वाला, ये इस प्रकार वेश धारण करके मेरा शत्रु ही आया है, क्योंकि पूर्व श्लोकों में आपने श्रवण कर चुके हैं किस प्रकार उन्होंने भगवान का गुणगान करते हैं। अगर संसार में सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो समस्त अनर्थ को परित्याग करके जंगल में भगवान का भजन करना चाहिए, वही एकमात्र सभी का मंगलकांक्षी है और सभी को शुभ कल्याण प्रदान करने वाला है। तो बहुत सारे श्लोकों में प्रह्लाद महाराज हिरण्यकशिपु का जवाब दे चुके हैं, तो इसलिए अब ये कहते हैं कि आप तो ये नालायक पुत्र और जीवित रहने के योग्य नहीं है, लगता है ये तो अभी जाने वाला है और ज्यादा समय उसका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सुहृत लिंगधर है, ये छद्म वेश में पुत्र वेश धारण करके मेरे शत्रु आया है, जैसे उन्होंने उपमा देते हैं, जैसे मुनिजन। मुनि शब्द का अर्थ होता है मननात मुनि। श्रवण, साधु गुरु शास्त्र श्रेष्ठ ज्येष्ठ से श्रवण किया हुआ वस्तु को उत्तम रूपे एकांत में बैठकर मनन करना, सत्य और असत्य का व नित्य अनित्य वस्तु में प्रभेद लाने के लिए मनन किया जाता है, उससे उत्तम निष्कर्ष निकला जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं जैसे मुनि जब वो मनन करने बैठते हैं तो हमारे इंद्रियां क्या करते हैं, तो मुनि को देखो, यहां मुनि शब्द का प्रयोग करके उन्होंने कहा है, जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि मुनि ये इंद्रियां, तो वो मननशील मुनि को भगवान का चरण अरविंद में जो मनन चिंतन वो करने नहीं देता है, बाह्य विषयों के प्रति इंद्रियों को भगा कर ले जाता है। तो उस समय वो मुनि क्या करते हैं, बारंबार बारंबार उन इंद्रियों को अपना वश में लाने के लिए प्रयास करते हैं, अंतत गत्वा उसमें से बहुत कम विरला मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, बहुत विरले लोग होते हैं जो कि इस इंद्रियों को अपना वश में रखकर भगवत चरणारविंद में निविष्ट हो जाना बहुत विरला ही है। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि जैसे मुनि का ये दुष्ट इंद्रियां, क्योंकि ये दुष्ट शब्द प्रयोग करते हैं इंद्रियों के लिए, ये इंद्रियां ये दुष्ट है, दुष्ट है ये इंद्रियां। क्यों, दुष्ट शब्द का अर्थ होता है दोषयुक्त, जिनमें दोष है। दोष क्या है, संसार में सारे भगवान एवं भगवान के संबंधित भक्तजनों के अतिरिक्त संसार में सभी ही दुष्ट वस्तु है। तो उनमें अगर हम अभिनिवेश करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो अंततगत्वा हमारे नाश ही होगा, कल्याण कदाचित उससे संभव नहीं है। तो इसलिए शास्त्र में इन इंद्रियों का बारे में बहुत सुंदर बात कही गई, आप लोग सुने होंगे कि श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद में और जगह जगह पर उन्होंने इस श्लोक को प्रयोग करते हैं। ये वास्तव में भागवत का श्लोक नहीं है, ये है सुभाषिता नहीं है, ये जो भी है किसी मननशील व्यक्ति उनको लिखे होंगे, ये जरूर ये व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में बढ़े चढ़े, इंद्रियों का जो प्राबल्य है और उनका निवारण कैसे होता है और वो इंद्रियां असंयमित इंद्रियां किस प्रकार व्यक्ति को लेकर मौत का घाट उतार देता है, तो उसका बारे में एक सुंदर श्लोक है। ये कहते हैं कुरंग मातंग पतंग मीना हतः पंच भीरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भीरेव पंच। कहते हैं पांच प्राणियों का नाम गिनाए उन्होंने। कहते हैं कुरंग, कुरंग मतलब हिरण, मातंग, मातंग मतलब हस्ती हाथी, और पतंग जानते हैं पतंगे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो शाम को जब बारिश के समय बहुत सारे हो जाते हैं वो पतंगे होते हैं। इनका दृष्टांत भी भगवान गीता में कहे, यथा नदी नाम बहवम्बुवेगा समुद्र मेवा भी मुखा द्रवंदी यथा पतंगा यथा ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। ये पतंगे किस प्रकार आग को देखकर, अग्नि को देखकर अपने को न्योछावर कर देते हैं वो आग में, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, तुरंत उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं और अपने को नाश कर डालते हैं। तो ये पतंग। फिर कहते हैं मीना, मत्स्य, मछलियां, ये सब मारे जाते हैं। ये पांच जो होते हैं, कुरंग, मातंग, पतंग और मीन, पतंग मीन, ये सब मारे जाते हैं। किस प्रकार? न एक एक इंद्रियों के बस होकर, इंद्रियों के बस होकर इंद्रियां किस प्रकार इन लोगों को मार डालते हैं। जब एक एक इंद्रियों के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करने से व्यक्ति का मौत हो जाता है, जिनके पास पांच पांच इंद्रियां है, जैसे हम लोग, हमारे पास पांच इंद्रियां है ना, क्या क्या है? चक्षु, कर्ण, नासा, जिह्वा, तो ये पांच इंद्रियां है, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं। जिनके पास इस प्रकार पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं तो इनका हालत क्या होता होगी, आप विचार करो, कैसे हम इन इंद्रियों को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। भले ही हम कह देंगे कि इन इंद्रियों का जो जो विषय है, क्योंकि पांच संसार में पांच ही विषय होते हैं, छठवा तो है ही नहीं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच ही होते हैं। यही पांच विषय ही मनुष्य को किस प्रकार बंधन में डालता है और अंततगत्व उनको मार डालता है। तो उन्होंने दृष्टांत देते हैं, कुरंग, हिरण, हिरण ये शब्द प्रेमी होते हैं। जैसे हम सुंदर सुंदर भजन हम सुनते हैं ना, तो श्रुति मधुर होता है, तो चलते हुए अगर कहीं भगवान का भजन सुंदर गान हो रहा है तो हम वहां खड़े रह जाते हैं। तो ये मृग ऐसे ही है, ये शब्द प्रेमी होता है। तो जब ये व्याध बहेलिया जब शिकार में जाता है, वो जानता है कहां पर हिरण विचरण करते हैं। ये हिरण जंगल में जहां हरी हरी घास होते हैं उन इलाके में वो विचरण करते हैं, आसपास में रहते हैं। तो ये सब वो जो व्याध होता है उनको पता होता है। तो जब उनको मार कर खाने के लिए वो इच्छा करता है, तो इस प्रकार उन्होंने सुंदर सुंदर वेणुनाद करता है, बंसीवादन करता है, सुंदर गान ये करता है। तो वो जो हिरण झुंड के साथ है, जो चर रहे थे, तो जब उनका ये कर्ण गह्वर में वो मधुर ध्वनि प्रविष्ट होता है, तो वहीं पे वो दांत में घास को दबाकर वहीं स्तब्ध हो जाते हैं। खाना नहीं, आगे चलना नहीं, पूरा वहीं खड़े खड़े रह जाते हैं। तो इस अवसर को प्राप्त होकर वो जो शिकारी तो पीछे से जाता है, प्रहार करता है, बांध लेता है, तो उनको लेकर आता है और फिर या तो ये बेचता है, तो या तो वो अपना भोजन बनाता है। इस प्रकार ये कुरंग का दशा है। ये किस प्रकार इंद्रिय? ये श्रोत्र इंद्रिय का वश में होकर। फिर आता है मातंग, हाथी, ये स्पर्श इंद्रिय से वशीभूत है। जब जंगल में हाथी है, हाथी को वास में करना मनुष्य के पक्षे बहुत कष्ट साध्य है, पर मनुष्य हाथी से बहुत बुद्धिमान है। तो उन्होंने क्या करते हैं, तो इनका स्पर्श, जब हाथी हाथी इनका संभोग होता है, अगर किसी व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने वहां चला गया, तो वो जीवित तो वापस आना मुश्किल, मार डालेगा, क्योंकि वो सोचता है कि हमारे भोग में ये बाधा डालने आया है, तो वही वो पैर में कुचल देता है। तो ये बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, ना जंगल में एक खाई बनाता है और चारों ओर खाई बना देता है, और बीच में एक हाथीनी को रख देता है, ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, और उसमें बैकग्राउंड में उनसे साउंड फिटिंग किया है। जैसे ही उनका संकेत है, जब उनका ऋतु का काल होता है, समो का समय होता है, जैसे आवाज से उन्होंने पहचान पाते हैं, तो उसी आवाज से वो साउंड करता है। तो हाथी तो वो शब्द को सुनकर वो आ जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है ये खाई है, लेकिन खाई में ये सब घास पोस्त ये सब वो भरा रहता है, उनको पता नहीं चलता है। वो तो मदमत्त होकर वो हाथीनी का स्पर्श करने के लिए पूरा आवेश होकर वहाँ दौड़ता है, जब खाई में गिर जाता है। तो फिर वो महावत आता है, अंकुश लाकर अपना बस में लाकर उनको अपना बस में कर लेता है। ये है मातंग। फिर पतंग, जैसे हम कहें बरसात में ज़्यादातर हम देखते हैं बहुत सारे कीड़े मकड़े उत्पन्न होते हैं। अगर आप शाम के टाइम में, दिन में तो सूर्य किरण रहते हैं, आग का प्रभाव निष्प्रभ हो जाता है तो पता नहीं चलता है। जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तब रात के समय अगर हम कहीं आग जलाते हैं, वो पतंग का वो इतने रूप के प्रति इतने आकृष्ट है, उनका आकर्षण रूप के प्रति इतना अधिक है, तो उन्होंने सोचते हैं कि ये मेरे इंद्रियों का भोग्य का वस्तु है। तो बिना सोच एक तो उनका पास ऐसे ही सोचने के लिए कोई बुद्धि नहीं है, तो एकदम रस होकर पूरा आग में प्रविष्ट हो जाता है। और फिर इतने धधकते हुए अग्नि में प्रविष्ट होगा इस छोटे से कीड़ा, और जीवित वहां से निकलेगा, वहीं भस्म हो जाता है। ये पतंग का दशा है। और मीन माने मछलियां, हम जानते हैं ये बहुत सभी को पता है, जो गांव में रहने वाले तो बचपन में छोटे छोटे बचपन में क्या है उनका ऐसे ही पेशा माने वृत्ति बना रखी है, तो लोग ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए वो एक बंसी उसमें थोप डाल देते हैं, एक कांटा हुक लगा देते हैं, और इसे मांस हो आटा हो मछली के माने प्रिय भोजन उसमें लगाकर वो पानी में डाल देते हैं। तो मछलियाँ उनका घ्राण शक्ति बहुत है, पानी में रहते हुए तो उनका वो जो घ्राण शक्ति के द्वारा आकृष्ट होकर वहाँ आ जाते हैं, और देखता है कि बढ़िया सुंदर भोजन है तो थोड़ा थोड़ा खाते ही बिल्कुल निगल लेता है उसको, और वो कांटे से वो फंस जाता है। फिर वो व्यक्ति जो शिकारी तो मछली पकड़ने वाला तो उसको ऊपर उठाकर ले जाता है, फिर बेचता है व खाता है जो भी करता है। तो इस प्रकार ये इंद्रियां हमारे, इस प्रकार असंयत इंद्रियां हमको ये संसार रूपी गड्ढे में हम किस प्रकार डाल देते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने ये दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार मुनि का इंद्रियां, मननशील मुनि का इंद्रियां उनको विचलित कर देता है। हमें श्रीमद् भागवत में बहुत सारे दृष्टांत देते हैं, देखते हैं कि सौभरी मुनि ये तंग आ गए यहाँ जमीन पर, उन्होंने जब तपस्या करने लगे तो विभिन्न प्रकार उनका इंद्रियां भोग्य वस्तु उनके सामने उपस्थित होने के कारण, तो उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में करके अपना लक्ष्य को बा जो भी उन्होंने ध्यान योग आदि के द्वारा जो भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे वो वंचित हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने निर्णय ले, यही मथुरा के यही वृंदावन के पास उन्होंने सौभरी मुनि जमुना नदी के जल का अंदर अपना योग बल से एक कोठरी निर्माण किया। बोला कि यहाँ ना शब्द आएगा, ना स्पर्श, ना रूप, ना रस, ना गंध, बढ़िया आराम से मैं भजन करूँगा, भगवान का चिंतन करूँगा, मन को एकाग्र करूँगा, भगवत चरणारविंद में मन को निविष्ट कर दूंगा। इस प्रकार उन्होंने सोचकर अपना योग बल से जल का अंदर
एक छोटा सा कुटिया निर्माण करके, कुटिया निर्माण नहीं किया, अपना जोग बल से पानी को हटा दिया, जैसे अपना सांस प्रश्वास के लिए जितना आवश्यक है उतना वो एक घर बना लिया, वहाँ बैठा और योग साधना में लग गए। फिर वहाँ पर भी ये स्पर्श जनित मछलियों का संभोग देखकर उनका मन में ये सब विचार आ गए। ये विचार से वो आने लगा किस प्रकार ये मछलियां भी स्पर्श जनित सुख अनुभव कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने किस प्रकार 60,000 अमानधाता के कन्याओं को विवाह किया, जो चले कोई बात नहीं है, ये चाहे एक क्यों ना हो, ये मुनि जो अपना इंद्रियों को बस में करके भगवान के चरण में अपना मन को लगाना चाहते हैं, एक ही कन्या पर्याप्त है उनका योग तपस्या भंग करने के लिए। तो इसलिए तो किस प्रकार ये संसार में भगवान ये सृष्टि रचना की है, क्यों ये सृष्टि रचना की है, क्योंकि हम जैसे बद्ध जीवों को ये संसार में ज्यादा समय न रहने के लिए ये सलाह भगवान का ये है, और कुछ उद्देश्य नहीं है। और उनमें शरीर बनाए, मनुष्य शरीर, और शरीर में ये पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, एक मन, ऐसे ही 11 इंद्रियां उनमें फिट कर डाले। ये इंद्रियां जैसे खिड़कियां होती है ना, ये जैसे हम लगाए हैं कमरे में, ये बाहर का या तो जो वायु का आना जाना, या हम अंदर रहकर बाहर को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ये पांच ज्ञान इंद्रियां इस शरीर में फिट कर दिए, बाहर का शब्द स्पर्श रूप रस गंध को उन्होंने लाकर मन में पहुंचाएंगे, मन उनको खूब खूब भोग करेगा। और मन का यही दशा होता है कि कितने भी उनको आप भोग्य वस्तु प्रदान कीजिए, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। श्रीमद् भागवत में हम पढ़े हैं ययाति ना, ययाति महाराज, ययाति, उन्होंने एक श्लोक कहे, जब ययाति महाराज शर्मिष्ठा और देवयानी को विवाह करने के बाद, देवयानी जब शर्मिष्ठा से रुष्ट होकर विद्वेष भाव पोषण करके अपना पति से मोल ले लिया, बोला कि नहीं, आप उनसे पुत्र संतान उत्पादन नहीं कर सकते, आप मुझे विवाह के, मैं आपका विवाहिता पत्नी हूं, वो तो दासी रूप में आई है शर्मिष्ठा, आप उनसे पुत्र संतान उत्पादन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने वो कहे, ये भी राजा के कन्या है, दासी के रूप में आए हैं, तो उससे क्या होगा, वो भी क्षत्रियाणी है और मैं क्षत्रिय हैं, तो उनका जब समय है तो उन्होंने उनको अप्रोच किए, अनुनय भी नहीं किए, तो उनसे सहमत होकर उनसे उन्होंने मान लिया और 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तो उससे बहुत क्रोधान्वित होकर शर्मिष्ठा अपना वो ससुरालय पति को त्याग करके अपना मायके चले गए। उस समय ये महाराज बहुत चिंतामग्न हो गए, क्या हो गया, इतना सुंदर पत्नी ब्राह्मण का कन्या है और वो छोड़कर चली गई, मैं किस प्रकार इंद्रियों का बस में होकर, तो उनका बात नहीं मानी। तो उन्होंने एक श्लोक कहा, ये श्लोक का अर्थ यह होता है कि जब इंद्रियों को हम भोग्य वस्तु प्रदान करते हैं, कभी इंद्रियां उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, जितने भी आप दे दीजिए, न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव विवर्धते। कहते हैं कि जैसे हवन कुंड में आप जितने भी आप आहुति डालें, घिया डालें, तो आप कहेंगे आप दो क्विंटल घी में इसमें डाल दूंगा, बस अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि मुझे हवन करना है, अग्नि को संतुष्ट करना है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना हो तो अग्नि का मुख में ही भगवान खाते हैं, तो ये अग्नि को ही, अग्नि में ही ये सारे घी डाल दूंगा तो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जितने भी आप डालेंगे वो उतने ही धधकते हुए उनका वेग बढ़ेगा। न जा तो का उसी प्रकार जब कामी व्यक्ति भोग के लालच में आकर इंद्रियों को प्रश्रय देता है, तो फिर आप बोलेंगे एक बार मैं इस रूप को आस्वादन करूं, ये रस को, ये गंध स्पर्श इस प्रकार आस्वादन करो, फिर बाद में नहीं करूंगा, कभी नहीं हो सकता है। एक बार किया मतलब दूसरा बार करेगा, दूसरा किया तो तीसरा करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप नहीं देंगे उस हवन कुंड में घी, एक किलो घी हवन के बाद बिल्कुल आप बंद कर दीजिए घी देना, थोड़े देर में वो घी जल जाने के बाद वो जो समीधा वो सब भस्म हो जाने के बाद में आग बुझ ही जाएगा। इसलिए कहते हैं न जा तो काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वत्म, मतलब ए हवन कुंड भूय एव विवर्तते। इसलिए इंद्रियों को भोग्य वस्तु प्रदान करके हम कदापि उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। एकमात्र उपाय, इंद्रियों को अगर हमारा हमने बस में करना चाहें तो एकमात्र भोग्य वस्तुओं को उससे हटाना चाहिए, नहीं देना। मन कितने भी चाहें, कितने भी व्याकुल हो, थोड़े देर में तो ऐसे ही रो रो कर जैसे बच्चा रोता है, माँ जानती है कि अभी बच्चा ऐसे परेशान तो करते काम धाम करने नहीं देता है, तो थोड़ा देर में रोएगा, ये दो वो दो, और जब नहीं जाती मैं उसके पास तो फिर अपना आप फिर वो रोना बंद कर देता है और फिर अपना खेलना शुरू कर देता है, भूल जाता है किस लिए माँ के लिए वो चिल्ला रहा था अभी। इसी प्रकार ये इंद्रियों को जब हम भोग्य वस्तु नहीं देंगे तो फिर वो बंद हो जाएंगे, इंद्रिया समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने दृष्टांत दिया, कल तो कहा कि अपना अंग को छेदन कर देना चाहिए, ये कितने भी कल्याणप्रद होना, क्योंकि पूरा अवयव को, शरीर को सुरक्षा देने के लिए शरीर का एक अवयव काट देना बुद्धिमानी है, तो उन्होंने कल कहा था। आज कहते हैं कि ये मुनि असंयत इंद्रिय वाला मुनि का मन जिस प्रकार इंद्रियों का बस में न रखने के कारण वो संतप्त होता है, इसी प्रकार ये चंदन वन में, असुर का चंदन वन में ये जो प्रहलाद है, ये बबुल का पेड़ को नाश कर देना, ये सर्वथा कल्याणप्रद है। तो इस प्रकार उन्होंने फिर आगे क्या कहेंगे, अपना जो असुर बंधु उनको निर्देश देंगे और कठोर से कठोर, लेकिन प्रहलाद वो अचूक है, ये अटूट हो, उनका प्रतिज्ञा अटल है, क्योंकि संसार का वस्तु के प्रति उनका थोड़े से भी लालच नहीं है, उन्होंने संसार को भली भांति जाना है, और जो उत्कृष्ट रस को आस्वादन करते हैं ये संसार रस क्या करेगा उनका, वो निश्चल भाव से आत्मचिंतन में, भगवत चिंतन में लगा रहता है, इसके एक के बाद एक उनके ऊपर ये मारने का जो प्रयास वो जारी रखता है हिरण्यकशिप। हरे कृष्ण। अगर समय तो हो गया, अगर छोटे मोटे प्रश्न है कि कुछ कमेंट्स हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, और प्रेमानंद।